Assalamu alaikum to a brand new program called Understanding Islam. As the name depicts, it's all about understanding Islam, your religion, my religion, the Islam. Musliman is baat pe fakhr karta hai ki khuda ne use duniya mein sabse bada inaam ke jise hum Islam kehte hain ata farmaya. Aur hum sab is baat pe khuda ka har waqt shukr baja lana chahte hain aur bajate hain ki khuda ne hame Hazur Pak sallallahu alaihi wasallam ki ummat mein paida kiya. خود خدا نے سورہ المائدہ میں اس بات کا ہمیں بتایا ہے اور خدا نے خود اسلام ہی کو پوری امت کے لیے سب سے اچھا اور سب سے بڑا انعام قبول کیا ہے. ہم بات کریں گے انڈرسٹینڈنگ اسلام کے حوالے سے, اسلام کی سمجھ بوجھ, اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے. ہم سب بہت ساری چیزیں ساری عمر ہوئی کے پڑھتے ہوئے آئے ہیں, لیکن یٹ دیر آر مینی تھنگز جن کے بارے میں ہم کنفیوزڈ ہیں. کانٹیکسٹ ہم نہیں جانتے, ہمارے کانسیپٹس کلیئر نہیں ہیں. اس لیے آج ہم آپ کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں تاکہ آپ کی لائف کالز لے سکیں, آپ کی ای میلز پڑھ سکیں, جن میں آپ کوشچنس کریں گے ہم سے, وٹ ایور دیٹ کمز ان ٹو یور مائنڈ ریگارڈنگ اسلام, ریگارڈنگ شریعہ. ہمارے ساتھ یہاں پر ہمارے آج کے مہمان ڈاکٹر معیز امجد موجود ہیں, جن سے ہم بات چیت کریں گے. ہم اکیلے ہی نہیں بلکہ آپ بھی ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں. ہمارا ای میل ایڈریس آپ ہمیں اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارا ٹیلی فون نمبر جو کہ آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکیں گے, دیٹس 0900-22-225. ہمارے گیسٹ معیز امجد, السلام علیکم سر. سر, ٹو اسٹارٹ وتھ, ایک بڑا بیسک کویشچن ہے, ایک وہ بات ہے جو کہ ہم شاید, میں یہ سوچتا ہوں کہ میں جانتا ہوں لیکن اگر میں غور کروں تو میں نہیں جانتا. ویری بیسک کویشچن, کچھ فرمائیے گا کہ واٹ از ریلیجن, ریلیجن کیا ہے, اینڈ وائی ڈو وی نیڈ اے ریلیجن.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. Religion primarily, if you look at it from a very technical perspective, is a set of beliefs, set of practices, and it ascribes its origin to God, whether it be any religion in the world. It would prescribe certain beliefs, and according to those beliefs it would prescribe certain practices. A combination of both these things would be what we call religion. So that precisely is what religion is.
So what good does a religion do to a man? I mean, we need a religion definitely for to lead a good life. That's what we have been studying all our lives. Like, what special and what specific does a religion do for a human being?
It is not because of any good that it would do. I think it is a completely upside down story about religion, why we should believe in religion because it would do good. No, that is not the case. Religion is in another way is quite like science. Mm-hmm. It is as it is. I mean, if you want to study science, it is not to be able to be a better person or anything, but just to be able to know what exists. So in the same way, religion actually addresses questions in one's mind. See, God made us humans, or for instance, barring religion, we are humans, and what distinguishes us from all the other creatures is our ability to analyze, our ability to think, and our ability to accumulate knowledge. Religion actually answers the questions that arise in people's mind, that arise in any person's mind, regarding where he came from, why is he here, what is going to be his end, is there anything after death or not. So you would see that, as I stated earlier, that religion actually addresses, gives you certain beliefs. Mm-hmm. These beliefs are in fact answers to these questions that are very natural to human beings. Now what happens is that we have come in such a stage, or have come into this world at such a stage, where these questions are answered for us, you know. Even before we ask these questions, we are told to believe that there is a God. We are told to believe that there is a life hereafter. We are told to believe that Muhammad sallallahu alaihi wasallam was a prophet of God and he received revelation from God. And that is why sometimes we are prone to believing that these are blind, you know, things, blind faith, or these are things that have no basis to them. Whereas, in fact, had it been the natural way, it would have been that we would have had questions in our minds, which would have answered by these various, you know, religions.
So, Doctor, there is a very common practice which we see around our, you know, public in our society. لوگ سوال کرنے سے ڈرتے ہیں, embarrassing محسوس کرتے ہیں. وی نو کہ ہمارے یہاں جو فیملی سیٹ اپس ہیں, काश कि ऐसा हो, खुदा करे कि हर घर में एक प्रैक्टिस ऐसी हो कि बच्चों को बचपन ही से चीज़ बताई जाए। लेकिन जहाँ पर ये चीज़ें नहीं बताई जाती, जब वो ग्रो अप कर जाता है कोई भी शख्स, यहाँ तक कि कुछ हमने ख़ुद भी चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं कि जुमा के वक्त कोई वज़ू कर रहा है, लेकिन अगर वो सही वज़ू नहीं करा तो उसको कोई बताए या ना बताए, अगर मैं जानता हूँ कि मैं कोई काम प्रैक्टिस इस्लामिकली सही नहीं कर रहा, मैं एम्बेरस्ड हूँ कि मेरी एज को देखते हुए लोग क्या सोचेंगे।
देखिए, ये चीज़ तो किसी भी फील्ड ऑफ नॉलेज में एक रुकावट है। यानी वेन एवर यू फील एम्बेरस्ड, वेन एवर यू फील दैट यू माइट हैव आस्क्ड और यू माइट आस्क रॉन्ग क्वेश्चन, दैट इज़ वेयर यू आर हिंडर्ड एंड यू वुड नॉट बी एबल टू डिवेलप इन योर नॉलेज। आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स इन एनी फॉर्म ऑफ नॉलेज इज दैट यू शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ कमिटिंग अ मिस्टेक। And obviously, asking the wrong question sometimes, or thinking that you might ask a wrong question, is in itself a barrier to gaining knowledge. And that is because you don't want to commit a mistake. It's quite natural. But we have to get rid of this fear, because we are humans. And unless we get rid of this fear, we would not be able to progress in our knowledge. And religion, I tell you, is, in my opinion, far more important than any other form of knowledge. Because religion does not only deal with your life, it deals with your death as well, and whatever is to come after death. And it claims, most of the religions do, that that which is to come after death is in fact going to be eternal. It is not going to be temporary like this life. So I think we really need
sir,
to
sorry, sir, I would have to cut you right here. Viewers, we would continue with the beautiful discussion going on. Abhi waqt hua chahta hai ek break ka, break se laut ke aaiye taki hum baat ko aage badha sakein. वेलकम बैक व्यूअर्स, और बात हो रही थी हमारे मेहमान डॉक्टर मोइज़ अमजद से, और बात का सिलसिला वहीं से बांधते हैं। लेकिन हमारे साथ इस वक्त लाइन पे कॉलर मौजूद हैं, वही लाइन के जिस पे आप डायल कर सकते हैं 09002225 पर। हेलो,
हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं?
जी, मैं मिसेस तौसीफ बात कर रही हूँ, लाहौर डिफेंस से।
जी जी, और हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, कुछ सवाल पूछना चाहेंगे?
जी जी, मेरे दो सवाल थे।
जी जी,
एक तो ज़कात से मुतल्लिक है कि ज़कात में जो माल है उसकी डेफिनेशन में पूछना चाह रही थी कि माल को किस तरह से डिफाइन किया जाता है।
अच्छा,
और उसमें फिर ये है कि हमारे पास एक है प्लॉट और एक घर है जिसमें हम रह रहे हैं, और इसके अलावा एक प्लॉट है और वो हमारे जाती इस्तेमाल के लिए हमने रखा हुआ है, वो कोई इन्वेस्टमेंट या रीसेल उसका पर्पज नहीं है, तो क्या उस पर ज़कात होगी? एक तो ये सवाल है।
अच्छा, दो सवाल आपके हैं,
डेफिनेशन भी पूछना चाह रहे हैं, और तीसरा ये कि औरत के लिए क्या सर कवर करना जो है बहुत जरूरी है, अगर वो ना करे तो क्या गुनाहगार होगी?
चलिए ठीक है, आपके सवाल आपके भी जवाब दे देते हैं। थैंक यू वेरी मच। जी मिस्टर साहब, आपकी जो बात पहले हो रही थी।
जी, मैं ये अर्ज कर रहा था कि इसमें असातिज़ा को, सोसाइटी के उलमा को, और जो भी इस वक्त अथॉरिटी में होते हैं, उनको इस बात को बहुत ज़्यादा इनक्रेज करना चाहिए कि लोग जो हैं वो फ्री थिंकिंग और अपने माइंड को आज़ाद छोड़ें, ताकि सवालात जो हैं उनके जवाब मिलें। और ये सवालात के जवाब जो हैं, ये इंशाल्लाह हमेशा अगर हकपरस्ती रहेगी दिल में, तो ये हमेशा सही तरफ ही रहनुमाई करेंगे।
अच्छा, और अब अगर कॉल्स हमने लेनी शुरू कर चुके हैं, कॉलर थी हमारे साथ, वो पूछना चाहती हैं कि दो बातें थी कि ज़कात में माल की डेफिनेशन क्या है, और दूसरी बात ये थी कि उनका एक घर है, एक प्लॉट है, उस पर ज़कात कितनी निकलती है?
देखिए, माल को आमतौर पर तो लोगों ने जो ट्रेडिशनली तो सोना लिया है, ताहम हमारे नज़दीक तो ये इस तरह से है कि हर वो चीज़ जिसको हम माल कहते हैं, वेल्थ जो हमारी होती है, उसमें बारिंग दोज थिंग्स, उन चीज़ों को आप निकाल दीजिए कि जो आपके ज़ाती इस्तेमाल में या कारोबारी इस्तेमाल में, जो आपका बैलेंस है उस पर आपको 2.5% ज़कात साल में एक मरतबा कोई एक दिन फिक्स कर लीजिए, वो खा पहली रमज़ान हो, खा कोई भी और दिन हो, उस दिन आपको साल में जो उसका बैलेंस है उस पर 2.5% ज़कात अदा करनी है।
अच्छा, और दूसरा सवाल इसके अलावा इनका ये था कि इनका एक प्लॉट है, जो जाहिर सी बात है प्लॉट कह रही हैं तो कंस्ट्रक्शन ऊपर नहीं होगी, और एक घर है, इन पे कितनी ज़कात निकलती है, निकलती भी है कि नहीं?
देखिए, जो चीज़ ज़ाती इस्तेमाल की है, जिस तरह मैंने अर्ज़ किया, उस पर ज़कात नहीं है। अगर वो प्लॉट ज़ाती इस्तेमाल के लिए जिस तरह अर्ज़ कर रही हैं, जो फरमा रही हैं कि उन्होंने रखा हुआ है, तो उस पर ज़कात नहीं होगी। और अगर वो इन्वेस्टमेंट के तौर पर या एक एसेट के तौर पर रखा हुआ है, तो उस पर भी 2.5% ज़कात होगी। जैसे ही एक चीज़ ज़ाती इस्तेमाल में, आपके घर के घर का सामान है, फर्नीचर है, आपकी वो पेंटिंग्स हैं, जो भी आपने चीज़ें लगाई हुई हैं, वो आपकी वेल्थ है, लेकिन वो चूंकि ज़ाती इस्तेमाल में है, इस वजह से उन पर ज़कात नहीं होगी, लाइकवाइज प्लॉट के
अच्छा,
ऊपर नहीं।
और इनका तीसरा सवाल भी इसके साथ था कि दुपट्टा अगर सर पे नहीं ओढ़ा जाता या सर को कवर नहीं किया जाता, चादर हो दुपट्टा हो, तो क्या गुनहगार होगा, या इस बारे में फरमाइएगा कि क्या ज़रूरी है?
देखिए, जो चीज़ शरीयत है, शरीयत के अंदर अल्लाह ताला ने जब मेल फीमेल इंटरेक्शन की बात की है तो उसमें सर कवर करने को शरीयत का हिस्सा नहीं बनाया है। ताहम सर कवर करना एक बड़ी स्ट्रॉन्ग मुस्लिम ट्रेडिशन रही है, इस मुसलमानों की एक बड़ी, बल्कि मैं अगर ये अर्ज़ करूँ तो ये गलत नहीं होगा कि ये मुसलमानों की ट्रेडिशन नहीं रही है, ये इब्राहिमी मज़ाहिब की ट्रेडिशन रही है। यानी आपको ये ट्रेडिशन जो है अपनी पूरी शान के साथ जुडाइज़म में नज़र आएगी, आपको ये ट्रेडिशन क्रिश्चियनिटी के आगाज़ में भरपूर नज़र आएगी, आपको ये ट्रेडिशन मुसलमानों में नज़र आएगी। ये बात के ये गुनाहगार होगा या नहीं, इस बात का जवाब असल में इस चीज़ से समझ लेना चाहिए कि शरीयत ने जो हमसे तकाज़े किए हैं अगर हम वो पूरे कर देते हैं तो उसके बाद हम पर मुआख़ज़ा नहीं है, लेकिन जो चीज़ें उसके ऊपर हैं, जो हमारी अच्छी रिवायात हैं, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहतरीन तालीमात हैं, जब हम उनको पूरा करते हैं तो वो हमारे लिए एलिवेशन का बायस बनती है, स्पिरिचुअल एलिवेशन का भी बायस बनती है और हमारे लिए रिवॉर्ड में भी एलिवेशन का बायस बनती है। हमको इस चीज़ को कोई कमतर नहीं समझना चाहिए। ऐसे ही है जिस तरह से आप नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज़ पढ़ने में कुछ अल्लाह ताला के ठहराए हुए फ़राइज़ हैं, अगर वो फ़र्ज़ आप पूरा नहीं करते हैं तो उसके नतीजे में आप काबिले मुआख़ज़ा हैं, उस पर मुआख़ज़ा किया जाएगा आखिरत में। और अगर आप नवाफिल नहीं पढ़ते हैं तो मुआख़ज़ा तो नहीं होगा, ताहम उसका अजर बेपनाह है। तो एक मुसलमान जो है उसको महज अपने आप को मुआख़ज़े से तो नहीं बचाना है, उसको तो आला तरीन दर्जे अचीव करने की जिद्दोजहद करनी है।
अच्छा सर, पहले ये बात जो पहले तो क्वेश्चन के आंसर की मेरे भी जहन में बात आई, एक बड़ी एक जनरल लोगों की ओपिनियन होती है या उनके एक यू नो कॉन्सेप्ट हैं कि जैसे आपने कहा जो चीज़ें वो यूज़ कर रहे हैं उन पे ज़कात नहीं है, जो सोना बैंक्स में पड़ा होता है, कुछ लोग ये बड़ा एक कॉन्ट्रोडिक्शन हैं, इससे कन्फ्लिक्शन होती है लोगों की, कुछ लोग कहते हैं कि बैंक में चाहे सोना हमारा कितना भी पड़ा है उस पे ज़कात हो जाएगी, लेकिन अगर वो सारा सोना हम अपने घर में ले आते हैं और उन्हें एवरी नाउ एंड देन हम यूज़ करते हैं, पहनते हैं, डिस्पाइट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द गोल्ड, उस पे नहीं लगेगा कोई ज़कात?
देखिए, ये एक बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल, जैसे ही इंसान के ऊपर शरीयत का गलबा हो जाए और वो ये महसूस करने लग पड़े कि ये शरीयत वैसे ही है जैसे कि मिसाल के तौर पर किसी भी लेजिस्लेचर का बनाया हुआ कानून होता है, तो वो असल में उसके अंदर से लूप होल्स ढूंढता है। ये कोई अच्छी स्पिरिट नहीं होती है। कुछ चीज़ों के बारे में आप ये तो कह सकते हैं कि ये कानूनी गिरफ्त नहीं हो सकती उस पर, लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला ने जिस स्पिरिट के साथ हमें जो कानून दिया है, अगर वो स्पिरिट हमने बिल्कुल नाकारा कर दी है तो फिर असल में वो कानून एक ऐसा दरख्त है कि जिसके ऊपर कोई बरगुबार नहीं। तो ये चीज़ अगर हमारे सामने रहे तो इसके बारे, इसी वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि ताकि इसको मिसयूज़ ना किया जाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ औक़ात इस तरह की जो प्रेशियस मेटल्स हैं उनकी क्वान्टिटीज़ भी तय कर दी, और स्पेशली सिल्वर के हवाले से, चूँकि ज़्यादा यूज़ होता था, 52.5 तोले चांदी जो है उसको आपने बता दिया कि ये इस हद तक आदमी जो है उसमें निकाल सकता है कि वो एग्जेम्पशन है। जो हमारी पर्सनल यूज़ की चीज़ है उसका मतलब ये नहीं कि साल में एक मरतबा यूज़ कर लिया। सोना अगर आपके पास बेपना है तो उसमें से कुछ वो सोना होगा, जाहिर है कि जो आपने हर रोज़ ऑलमोस्ट पहना हुआ है वो एग्जेम्प्टेड है, बाकी को आप अगर आप कानून के लूप होल ढूंढ के तो एग्जेम्प्ट करना चाहते हैं तो ये कोई अच्छी स्पिरिट नहीं होगी। अल्लाह ताला के कवानीन के साथ ये मामला नहीं करना चाहिए।
डॉक्टर साहब, इसके अलावा एक और बात ये भी है, अब रमज़ान मुबारक है, ठीक है, अब ये बातों का आई होप के दीज क्वेश्चंस यू नो दे सेटिस्फाई द आंसर्स ऑलरेडी सेटिस्फाई द क्वेश्चंस। बात हमारे साथ एक, हम अपने सामने नाज़रीन को यहाँ पर ये बताते चलें कि वो हमें ईमेल भी, नाज़रीन आप कर सकते हैं, हमारा ईमेल एड्रेस आपको बताते चलें, दैट्स आज डॉट अंडरस्टैंडिंग इस्लाम एट द रेट ऑफ hotmail.com, आज डॉट अंडरस्टैंडिंग इस्लाम एट द रेट ऑफ yahoo.com। ये वो दो ईमेल एड्रेसेस हैं कि जिन पे आप हमें ईमेल कर सकते हैं, और जिस तरह से मुइज़ अमजद साहब आंसर कर रहे हैं आपके क्वेश्चंस को, चाहे वो 0900-222-225 पे आप फ़ोन करके करें या ये ईमेल पे आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ये सर, एक अब रमज़ान मुबारक है और चांद देखना, उस पे ईद को डिक्लेयर करना, रमज़ान पहली रमज़ान को डिक्लेयर करना, कुछ रीजन्स रीजन वाइज जहाँ बात होती है वो तो हम मान सकते हैं कि गल्फ़ में या अमेरिका में, ऑल दो के बहुत ज़्यादा डिफरेंस है पाकिस्तान बीच में आता है, लेकिन ये एक्सट्रीम्स जो हैं ग्लोब की, ये तो एक साथ रमज़ान और ईद की बुनियाद रखते हैं। पाकिस्तान में लोग सबसे अलग-अलग प्रैक्टिसेस करते हैं, और जब पाकिस्तान की बात करते हैं तो यहाँ पर भी प्रोविंसेस में भी कोई इतफाक नज़र नहीं आता। फरमाइएगा।
तो ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता है, बल्कि मैंने ये देखा है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी जिधर जिधर जा के ज़्यादा सेटल हुई है उधर हर जगह पे यही होता है। यानी दे समहाउ, इसकी एक बड़ी ट्रेजिक सी सूरत हाल ये है कि दे समहाउ फाइंड मीन्स ऑफ डिफरिंग विद ईच अदर। रमज़ान का चांद देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई शुबा नहीं, लेकिन अगर आप दीन की स्पिरिट को सही समझें तो इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक यूनिफाइड फॉर्म में जो अपनी वर्शिप्स हैं और जो कलेक्टिविटी है उसको यूनिफाइड तरीके से रखना वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस मामले में डिफरेंसेस ओपिनियन भी हो सकते हैं और इस मामले में डिफरेंसेस ऑफ प्रैक्टिसेस भी हो सकती हैं जहाँ तक इंडिविजुअल प्रैक्टिसेस का ताल्लुक हो, लेकिन जब जैसे ही हमारी बात कलेक्टिविटी के ऊपर आती है तो हमें कलेक्टिविटी के जो डिसीजन मेकर्स हैं उन पर एतमाद ही करना चाहिए, यही इस्लाम की तालीम है। जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है कि चांद देखकर ही मामला करना है तो ये भी रिप्रेजेंटेटिव ही को करना है। यानी मैं इस बेसिस पर कि मैंने तो आज चांद नहीं देखा तो मैं क्यों रोज़ा रखूँ, ये तो नहीं मामला करूँगा। यानी मुझे चांद देखने का मतलब ये कि चांद नज़र आ जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये कहा, जब ये फरमाया कि हमें चांद देख कर रोज़ा रखना, चांद देख कर रोज़ा खोलना यानी ईद करनी है, तो उससे मुराद ये थी कि ये महज काउंटिंग में नहीं होनी चाहिए। यानी आप 30 दिन पूरे करके तो ना करें, उसकी वजह ये कि ये तो फिर वो हम वापस लूनर से सोलर कैलेंडर पर चले जाएंगे जो अरबों ने गलती कर ली थी अपने यहाँ। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए आपने फरमाया कि चांद की अपीयरेंस पर ये होना चाहिए। आज अगर हम चांद की अपीयरेंस को साइंटिफिक बुनियादों पर रिलायबल बेसिस पर प्रिडिक्ट कर सकते हैं तो इसके बाद चांद को फिज़िकली देखना इतना इम्पोर्टेंट नहीं रह जाता, बल्कि चांद से हमारी डेट्स, हमारी इबादत जो हैं, ख्वाब हज हो ख्वाब रमज़ान हो, इसका मुंसलिक होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब ये है कि चांद ही से रोज़ा रखा जाएगा, चांद ही से खोला जाएगा, इसके लिए हम कोई डेट फिक्स नहीं कर लेंगे।
और जैसे आप जानते हैं कि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि हम पूरा एक साल कितनी इल्यूमिनेंस रहेगी मून की, कितने परसेंट मून इल्यूमिनेट करेगा, ये सारी बातें अब प्रेडिक्टेबल रह गई हैं।
प्रेडिक्टेबल है, और अगर रिलायबली प्रेडिक्टेबल है, रिलायबली प्रेडिक्टेबल हो जाएंगी तो फिर उसके बाद दीन को कोई एतराज़ नहीं। अगर हम
जब हम बात साइंस और कुरान की करते हैं, हम कहते हैं कि कुरान में जो भी चीज़ें हैं उनमें से लेके साइंस एक डेवलप हो गई और हम हर जगह पर उसको को रिलेट करते हैं, इन अ सेंस कि ऑफकोर्स कुरान इस्लाम पहले है, उसमें से चीज़ें निकाल के जो उसमें प्रूफ्स दिए गए हैं साइंस उन प्रूफ्स को रिकन्फर्म करती है। अभी चीज़ें साथ साथ चलती हैं, शाना बशाना चलती हैं, लेकिन आज जो भी सरबराह है जिसे डिक्लेयर करना है, ये कहना कि टेक्नोलॉजी इस चीज़ को बता सकती है कि आज चांद नज़र आएगा या नहीं, इस पर बिलीव नहीं करते, उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं?
इस पर बिलीव ना करना या करना, ये फिर अगेन दिस रिलेट्स टू द डिसीजन ऑफ द कलेक्टिविटी। मेरी राय एक मैं अर्ज करूँगा, और मेरी राय अगर काबिल कबूल नज़र आएगी तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अगर कलेक्टिविटी एक्सेप्ट कर लेती है तो मुझे उसको मानना चाहिए। मैं जो अर्ज़ कर रहा हूँ वो ये कि ये अगर मेरी राय ये है कि अगर ये कर लिया जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर कलेक्टिविटी का डिसीजन ये होगा कि नहीं इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए बल्कि फिजिकल अपेयरेंस और फिजिकल साइटिंग ऑफ द मून पर डिपेंड करना चाहिए, तो जाहिर है कि सरनिक वो होगा उसके आगे।
तो सर फिर जब बात हम कर रहे हैं मुख्तलिफ इवेंट्स वगैरह की, हज हज की सबसे बड़ी मिसाल दी जाती है कि हम रमज़ान पे मुत्तफिक नहीं हैं, हम ईद पे मुत्तफिक नहीं हैं, लेकिन चले अल्हम्दुलिल्लाह हम हज पे आके मुत्तफिक होते हैं। कुछ सवाल बड़े कॉमन ये भी आते हैं कि हरम है, खुदा का घर है, एक मुसलमानों का एक मोस्ट फोकल पॉइंट है, अब वहाँ से जो ऐलान किया जाता है या वहाँ से जो भी इवेंट की बुनियाद रखी जाती है, वाई नॉट टू फॉलो हरम सिस्टम के वहाँ से अगर ईद डिक्लेयर की गई है तो पूरी मुस्लिम उम्मा जो है वो एक दिन ईद करे, एक दिन रमज़ान करे, क्या ये चीज़ मुनासिब या बेहतर या बेहतरीन नहीं होगी?
देखिए, इसमें दो राय हो सकती हैं और ये इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन फिर अगेन दो राय हो सकती हैं का मतलब ये नहीं कि उम्मत को डिवाइडेड होना चाहिए। मतलब ये कि इसमें जो कलेक्टिविटी की डिसीजन है उसको फॉलो करना चाहिए, इसके नतीजे में ऑटोमेटिकली उम्मत डिवाइडेड नहीं रहेगी। जहाँ तक इस चीज़ हज का ताल्लुक है, मैं उस मामले में तो ये बड़ी कंसिडरेबल बात है, क्योंकि हज एक लोकलाइज्ड इबादत है। हज जो है वो कोई यूनिवर्सल इबादत नहीं है, वो तो मक्के के अंदर परफॉर्म की जाने वाली इबादत है, मक्के और उसके मज़ाफात में। चुनाचे उसमें जो मून साइटिंग उस लोकेलिटी में है वही असल में दैट शुड बी कंसिडर्ड एज फाइनल, और उसकी एप्लीकेशन उसी के मुताबिक आजकल मामला होता है।
लेकिन ये यहाँ पर देखा गया कि हमारे यहाँ जो जैसे अब लाहौर की अगर हम बात करें या किसी एक पर्टिकुलर शहर की बात करें, तो वहाँ पे अगर यहाँ पे हमारे यहाँ सुबह सरहद में लोग सऊदीया के साथ प्रैक्टिस करते हैं, फॉलो करते हैं उन्हीं के जो अनाउंसमेंट्स होती हैं, तो इस शहर में रहकर अगर यहाँ पर एक कमेटी अनाउंस करती है कि हमारा आज चांद नज़र नहीं आया, लेकिन अब बहुत सारे उस प्रोविंस के रहने वाले लोगों को जो कि रहे इस शहर में रहे हैं, लेकिन वो मैंने बारोज़ा देखा बहुत सारे लोगों को जबकि हमारा हम रोज़ा नहीं रखे थे।
नहीं देखिए, मैं रमज़ान की बात नहीं कर रहा हूँ। रमज़ान एक लोकलाइज्ड इबादत नहीं है, रमज़ान एक यूनिवर्सल इबादत है। ये हो सकता है कि किसी जगह पर आपको 30 रोज़ 30 दिनों का चांद हो और किसी जगह पर 29 दिनों का
अच्छा
चांद।
डॉक्टर साहब, इस बात को हम बिल्कुल कंटिन्यू करते हैं। हमारे साथ नाज़रीन एक कॉलर आज के प्रोग्राम के दूसरे कॉलर लाइन पे मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो, वालेकुम
वालेकुम
अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। कौन साहब बात कर रहे हैं?
मैं असगर अली हामिद बात कर रहा हूँ बेटा।
और असगर साहब कहाँ से बात कर रहे हैं?
मैं कराची नॉर्थ नाजिमाबाद से बात कर रहा हूँ। मेरा नंबर है 6624।
जी, और ये
5 5
बताइएगा, बचा फरमाया आपने, हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं,
जी
कुछ सवाल आपके जहन में हो जो आप इनसे पूछना चाहें?
जी हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर मेरे पास सोने के अलावा और मकान वगैरह है या दुकानें हैं और उसमें मैं कारोबार करता हूँ और कुछ किराए पे दिया हुआ है, तो क्या उस पर भी मुझे ज़कात देनी होगी?
सही, आपका यही सवाल है, बहुत
जी,
शुक्रिया।
जी बेटा
जी सर, इस बारे में प्रॉब्ली काफ़ी ज़्यादा आपने एक्सप्लेनेशन दी हैं, थोड़ी सी और इसलाह कर
जी।
दीजिए।
ज़कात जो है जी, वो एक उस वेल्थ पे, जो पहला सवाल था, मैं फिर से उसको रिपीट कर दूं, एक वेल्थ पे होती है जो कि हमारी पर्सनल और बिजनेस यूज़ में नहीं होती, उस पर ज़कात है 2.5%। जैसे ही आपकी वेल्थ जो है वो किसी प्रोडक्टिव एलिमेंट में लग जाए, खा वो सर्विस प्रोड्यूस कर रही हो, खा वो गुड्स प्रोड्यूस कर रही हो, प्रोडक्शन में लग जाए, तो अब उसके हिसाब से ज़कात लगती है। अगर वो सर्विस प्रोड्यूस कर, जैसे रेंट है मिसाल के तौर पर, इट इज़ अ सर्विस, आपके रेजिडेंशियल या बिजनेस को आपने प्रोवाइड किया हुआ है, एक अकोमोडेशन प्रोवाइड की हुई है, इस ये अकोमोडेशन खुद टेक्निकल टर्म में इट वुड बी कॉल्ड सर्विस। सर्विस जब प्रोवाइड की जाती है तो वो सर्विस जो है, जब दोनों के मिलाप से, यानी लेबर और कैपिटल दोनों इनपुट से प्रोवाइड हो, तो इस पर 5% ऑफ द प्रोड्यूस ज़कात होती है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बारानी और जो यानी नहरी ज़मीनों में जो फ़र्क किया है, उसके ऊपर ये एक इज्तिहाद है कि यानी जैसे ही सर्विस जब हम प्रोवाइड करते हैं, जैसे रेंट है दुकान का, तो अब दुकान पर ज़कात नहीं होगी, बल्कि जो कुछ आपको रेंट मिल रहा है, क्योंकि आपने एक इन्वेस्टमेंट करके दुकान बना दी, अब उस दुकान की जो जो सर्विस आपने प्रोवाइड की है उसको अगर हम वैल्यू करना चाहें तो वो रेंट होती है, तो रेंट का 10% जो है उसको ज़कात के अंदर उसमें से ज़कात निकल जाएगी।
अच्छा, मैं सब एक अब लोग सबसे ज़्यादा आपने अंदाज़ा लगाया कि हमारे नाज़रीन जो हमारे साथ मौजूद हैं सबसे ज़्यादा कंसर्न हैं ज़कात के बारे में। लोग ज़कात देना चाहते हैं, ये देखा भी गया, लेकिन कन्फर्म उनको नहीं होता। बैंक से डिडक्शंस होती हैं ज़कात की, और पहले दिन ही जब रमज़ान शुरू होता है उससे एक दिन पहले जो है डिडक्शंस कर दी जाती हैं, लोग पैसे भी निकाल रहे होते हैं बैंक से, रीज़न बीइंग के वो देना चाहते हैं ज़कात, लेकिन उन्हें कन्फर्म नहीं होता कि शायद सही हाथों में जाए या ना जाए। तो कोई शख्स ये समझता है कि अगर उसकी ज़कात फॉर इंस्टेंस सही हाथ में नहीं गई लेकिन बैंक से डिडक्शन हो गई, तो क्या उसको सवाब उतना ही मिलेगा? क्योंकि लोग बड़े कन्फ्यूज़ होते हैं इस बारे में, और यही वजह होती है कि वो अपना पैसा विड्रॉ करवा देते हैं।
देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं, उसको बड़ी अच्छी तरह समझ लें। एक, मुसलमान रियासत के अंदर ज़कात लेने का प्राइमरी हक स्टेट को है, ये बात समझ लेनी चाहिए। स्टेट उसको मिसयूज़ करती है तो ये स्टेट रिस्पॉन्सिबल होगी, इसको अल्लाह के यहाँ मुआवजे का सामना करना होगा। आपका मामला, आपकी जिम्मेदारी ये नहीं है एज एन इंडिविजुअल लिविंग एज ए सिटीजन ऑफ द स्टेट, मेरा अगर बैंक अकाउंट है तो मेरी जिम्मेदारी ये नहीं है कि मैं इसको जज करूँ कि क्या चीज़ मेरे हिसाब से ठीक इस्तेमाल है और क्या चीज़ गलत इस्तेमाल है। मेरी ज़िम्मेदारी तो वो कंट्रीब्यूशन करना है उस पर्पज़ के लिए, जिस पर्पज़ के लिए मुझे अल्लाह ताला ने कहा कि कंट्रीब्यूट करूँ। जब ये सूरत हाल है तो मुझे इससे गर्ज नहीं रखनी चाहिए, टू बी वेरी ब्लंट अबाउट इट, कि ये आगे इस्तेमाल क्या होगा। ये मिसयूज़ अगर होगा तो ये अल्लाह ताला के यहाँ उनका मुआवजा होगा।
अच्छा सर, इस बात को हम आगे लेके जाते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ एक और कॉलर यहाँ लाइन पर मौजूद हैं। हेलो,
हेलो,
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम
कौन सा बात कर रही हैं?
जी, मेरा नाम राशिदा है, मैं इस्लामाबाद से बोल रही हूँ।
दोबारा बताइएगा कहाँ से बात कर रही हैं?
इस्लामाबाद से।
जी राशिदा, अपना सवाल कीजिएगा, हमारे साथ मोइज अमजद साहब यहाँ पर मौजूद हैं।
अच्छा जी, मेरा सवाल ये है कि मेरी एक बहन है बड़ी, और उनको मसला है, वो है किडनी का प्रॉब्लम है उन्हें ना, तो उन्हें डॉक्टर ने ये मशवरा दिया है कि वो जो है जो है दिन भर पानी पिया करें ना, उनको काफी अपने आप को जो है वो रखना है पानी के ऊपर, तो वो रोजा भी रखना चाहती हैं, और उन्होंने अब ये किया है कि वो रोजा रख रही हैं, लेकिन वो दिन भर पानी भी पी रही, ये नहीं कि वो अपनी प्यास बुझाने के लिए, लेकिन जस्ट फॉर मेडिकल रीजंस शी इज ड्रिंकिंग वाटर।
ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।
आई जस्ट वांट टू नो कि वेदर दिस इज एडमिसिबल इन इस्लाम।
ठीक है, आपका सवाल बिल्कुल समझ आ गया। अभी मोइज़म जैसे आपसे आपकी बात कर लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। शुक्रिया जी, मैं सब आपको सवाल समझ आ गया होगा कि वो पेशेंट हैं प्रॉब्ली टीबी की, इन्होंने कहा, और डॉक्टर ने उन्हें दिन भर पानी पीने के लिए रिकमेंड किया है। वो अपने तौर पे फास्टिंग भी कर रही हैं,
किडनी की
अपने तौर पे फास्टिंग भी कर रही हैं और उसके साथ वो पानी भी पी रही हैं, तो वो पूछ रही थी क्या ये परमिसिबल है या एक्सेप्टेबल होगा ऐसा फास्ट।
देखिए, ये बात तो उन पर बिल्कुल वाजे है और रोज़ा रखने वाले पे भी बिल्कुल वाजे है कि रोज़ा असल में जिस चीज़ को कहते हैं उसमें पानी से परहेज ही
समथिंग दैट गोज इनटू द स्टमक प्रॉब्ली
जी, इट इज़ एवरी ईटेबल्स हों या ड्रिंकेबल्स हों, रोज़ा तो वो होता है कि जिसके अंदर हम हर चीज़ से परहेज करते हैं। ताहम ये एक बहुत शानदार स्पिरिट है और इसको बहुत कमेंडेबल स्पिरिट है और अल्लाह ताला के यहाँ ये बड़ा अजर का बायस बनेगी कि एक खातून जो हैं, जो कि जिनको डॉक्टर्स ने ये रिकमेंड किया है बल्कि ये प्रिस्क्राइब किया है कि वो दिन भर पानी पिएं और अपने सिस्टम को फ्लश
रोज़ा ना रखें,
रोज़ा ना रखें, वो बाकी सब चीज़ों से परहेज़ करके सिर्फ उतनी मकदार में जितनी मकदार में उनको पानी दरकार है वो पी रही हैं, तो ये एक बड़ी नहायत शानदार स्पिरिट है। इस पर अल्लाह ताला के यहाँ उनको बड़ा अजर उम्मीद है मिलेगा। अल्लाह ताला की रहमत हमेशा ही उसकी उसके कवानीन पर गालिब रहती है, ये बात समझ लेनी चाहिए। जो वो प्रैक्टिस कर रही हैं वो उसको अगरचे हम शरीयत में कोई आदमी इस पर डिफरेंस रख सकता है कि रोज़ा कहीं या ना कहीं, लेकिन वो अपनी स्पिरिट में बहुत से रोज़ादारों से बेहतर रोज़ा होगा।
अच्छा, हमारे पास यहाँ पर कुछ मैसेजेस वगैरह भी हैं, जैसे कि हमने अपने जो व्यूअर्स हैं, हमने आपको नाज़रीन बताया है कि हमारे ईमेल एड्रेसेस वगैरह हैं aaj.understandingislam@hotmail.com aaj.understandingislam@yahoo.com। इस पे आप हमें लाइव यानी कि मैसेंजर्स के थ्रू मैसेजेस भी भेज सकते हैं, ईमेल्स भी हम आपके रिसीव कर रहे हैं। हमारे साथ एक यहाँ पर मैसेज है, ये शिकायत कर रही हैं, शिकायत है हमारे वेंडर से, हमारे जो यहाँ पे दुकानदार हजरात हैं, कि पूरी दुनिया में क्या वो मिसाल बड़ी ये कोट की जाती है कि क्रिसमस आती है तो चीज़ें लोगों को फैसिलिटेट किया जाता है, चीज़ों की जो कॉस्ट है कम हो जाती है, हमारे यहाँ लोग बाज नहीं आते और इस्लामिकली ये इस्लाम में नहायत वो कह रही हैं कि अन इस्लामिक ये काम है। इस पर क्या आप कमेंट करेंगे? ये हमारे साथ सादिया साहिबाएँ कराची से।
देखिए, मुसलमान नेशन अब असल में एक अजीब किस्म के डायलेमा का शिकार भी हैं और वो डायलेमा ये कि हम सब ऑलमोस्ट थर्ड वर्ल्ड नेशंस हैं, हमारी साइकी कुछ अजीब एक्सप्लॉयटेटिव साइकी बन चुकी हुई है। हम लोग असल में ये महसूस करते हैं कि दुनिया हमें एक्सप्लॉयट करती है और हमें जब मौका मिले हम एक्सप्लॉयट करें।
सर, इस बात को थोड़ा सा कदकलामी माफ़, क्योंकि ये चीज़ें ज़रा चलती रहेंगी, कॉलर्स भी हमारे साथ होते हैं, ईमेल्स भी हैं, ईमेल को थोड़ा सा डिले किया जा सकता है लेकिन कॉलर्स तो इस बात कंटिन्यू करते हैं। हेलो, हेलो,
सलाम अलैकुम जी।
वालेकुम अस्सलाम, कौन साहब और कहाँ से बात कर रहे हैं?
मैं जी राशिद हुसैन बोल रहा हूँ, लाहौर से।
जी राशिद हुसैन साहब, फरमाइएगा, आपका सवाल क्या है?
मेरा सवाल ये है कि अभी आपने एक साहब का जवाब दिया रेंटल इनकम के सिलसिले में ज़कात की, और मेरा सवाल ये है कि अगर जो है जो शख्स रेंटल इनकम जिसकी होती है तो वो अगर पूरे साल में उसका सारा खर्चा एज इट इज़ रेंटल इनकम का हो जाता है तो जो है वो उस पर कैसे ज़कात देगा?
ठीक है, आपके सवाल का जवाब अभी ले लेते हैं, कॉल करने का बहुत शुक्रिया। रोशो, अभी बात को हम कंटिन्यू करते हैं और यहाँ पे एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। नाज़रीन, अभी एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, आप एक शॉर्ट ब्रेक लीजिए, फिर इन दोनों सवालात जो एक बात हो रही है ईमेल और इस टेलीफोनिक कॉल का जवाब अभी हम सर से लेते हैं। टेक अ ब्रेक। नाज़रीन, बात हो रही है, हमारे साथ यहाँ पर गेस्ट मौजूद हैं मोइज़ अमजद साहब, जो पूरे रमज़ान हमारे साथ यहाँ पर रहेंगे आपके सवालों के जवाब देने के लिए। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर लाइन पे मौजूद हैं, इनकी कॉल लेते हैं, देखते हैं ये कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं। हेलो हेलो हेलो
हेलो
जी, मेरी आवाज़ आपको आ रही होगी। अस्सलाम वालेकुम
जी। अस्सलाम वालेकुम,
कौन और कहाँ से बात कर रही?
मैं मिसेस बट हॉलबर्ट बात कर रही हूँ मुल्तान से। मेरा मोइज़ से क्वेश्चन है, ये भी इन्होंने आंसर किया है कि ज़कात जो है वो बैंकों से डिडक्ट करवाएं और ये स्टेट का काम है कि वो आगे दे या ना दे, वो अल्लाह के यहाँ जवाब दे है। क्या मुझे ये बताएंगे कि इस्लामी स्टेट पाकिस्तान है और वही चीज़ जो आम हमारे जो पाकिस्तान के घरों में स्टेट का काम है वो कर रही है, जो हम ज़कात भी दें उनको। और दूसरा ये कि जब हमारे नज़दीक हमारे रिश्तेदार जो हमें नज़र आ रहे हैं वो पहले हैं या स्टेट पहले।
ठीक है, आपके सवाल को बिल्कुल समझ गए हैं, बहुत शुक्रिया। नहीं सर, हम बात को कंटिन्यू करते हैं। पहले बात होती है वेंडर्स के हवाले से, दुकानदारों के हवाले से, अशियाए खुर्दनोश
जी
जो महंगी हो जाती हैं
जी। मैं ये अर्ज़ कर रहा था जी कि जो हमारा सिलसिला है, जो हमारी अब कलेक्टिव साइकी बन चुकी है, ये हम वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज टू एक्सप्लॉयट अदर्स। ये एक बड़ी बड़ी ट्रेजिक बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है, लेकिन बहरहाल ये है, इसको हमें ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए, लोगों को इस पर मुतनब्बे करना चाहिए, इस पर कवानीन बनाने चाहिए। लेकिन रमज़ान भी असल में उन लोगों के हवाले से एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि जिस पर पैसा बनाया जा सकता है।
सर, ऐसे लोगों के लिए कोई मतलब, अगर शरी पॉइंट ऑफ व्यू से अब हर इंसान एज ए मुस्लिम, ठीक है, इस्लाम को हम जानते हैं, हम डरते भी हैं सज़ाओं से, लेकिन फिर इग्नोर कर जाते हैं, क्या पेनल्टी हो सकती है ऐसे शख्स के साथ जो गरीब लोग भी रोज़ा रखते हैं, अमीर भी रखते हैं, फैसिलिटेट जो नहीं करता बल्कि ब्लॉक करता है आपके प्रैक्टिसेस को? और ऐसे लोग ऑफ कोर्स एक सीधी सी बात है, टू बी वेरी ब्लंट, लोग तंग होते हैं, तो कोई शरी पेनल्टी ऐसे लोगों के लिए ताकि शायद थोड़ा ख्याल आए?
देखिए, शरीयत की पेनल्टी तो नहीं है, शरीयत की पेनल्टी तो इस सिलसिले में, शरीयत तो अगर पेनल्टी होती तो कुरान मजीद में या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इम्पोज किया होता। जो पेनल्टीज़ हैं, जो हमारे पास जो गुंजाइश है, जो हमारी हमारे पास जो हमारी जो हमारी पावर है, वो ये कि हम कलेक्टिव लेवल पर इस चीज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए कोई भी लॉज जो हम मुनासिब समझते हैं वो पास कर सकते हैं। और उसमें कोई पेनल्टी रखना चाहते हैं, कोई फ़ाइन रखना चाहते हैं, कोई इम्प्रिजनमेंट रखना चाहते हैं, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ़ द क्राइम, इसमें शरीयत हमको रोकती नहीं है। हमारा काम सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशन है इन सच अ मैनर कि लोगों की एक्सप्लॉयटेशन कम से कम हो। तो अगर कलेक्टिविटी जो है वो ये काम करती है तो उसके नतीजे में ये सारे लॉज बनेंगे।
जैसे हमारे पास वक्त बहुत कम है, सवाल काफ़ी ज़्यादा हैं। दूसरा सवाल रेंटल्स के हवाले से हमसे पूछा गया था, इस बारे में क्या फरमाएं?
देखिए, जब हम ये कहते हैं कि रेंटल इनकम जो है वो आ रही है, तो असल में हम ये नहीं कह रहे कि यानी आपके पास पैसा है या नहीं है आपको ये ज़कात देनी है। हम तो ये कह रहे हैं कि यानी बिजनेस जिस वक्त आप शुरू करते हैं किसी वेल्थ को इन्वेस्ट करके, तो उस पर ज़कात की दो सूरतें हो सकती हैं, इसमें इख्तलाफ भी मौजूद है। दो सूरतें ये हो सकती हैं कि या तो वो कहेगा कि उसकी नेट वर्थ पर ज़कात ली जाए, जैसे माल पे लेते हैं 2.5% उस पर ली जाएगी उसकी नेट वर्थ पर या उसके टोटल एसेट्स पर। और दूसरी सूरत ये हो सकती है कि इस पर ज़कात अब नेट माल की नहीं लगेगी बल्कि पैदावार की लगेगी। तो हमारे नज़दीक ये पैदावार की ज़कात है। अब एक आदमी ये कहता है कि मैं जब मेरा रेंट इतना कम आता है कि मेरे जो एक्सपेंसेस हैं रेंट के ऊपर, यानी मेरी जो बिल्डिंग को मेंटेन करने के एक्सपेंसेस हैं वो उससे एक्सीड कर गए, तो इट इज़ पॉसिबल ये बिज़नेस में कभी अगर हो जाता है कोई ऐसी किसी साल ऐसा मामला हो जाता है तो उसकी ज़कात जो है वो नेक्स्ट ईयर कर लीजिए। लेकिन ये बात कि ज़कात जो है वो होनी कितनी चाहिए, इस पर असल में मैंने राय दी है। ये प्रैक्टिकल सिचुएशन जो है ये तो असल में बिजनेसमैन खुद बेहतर हैंडल करता है। इसमें मैं एक चीज़ को और भी क्लैरिफाई करना चाहूँगा जो मैं बड़ा ज़रूरी समझता हूँ
डॉक्टर साहब। अभी यहाँ पर थोड़े से, जैसे वक्त हमेशा आड़े आता है, वक्त बहुत कम है नाज़रीन, आपको बताते चलें कि मोईज़ अमजद साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद रहे हैं और इनसे बात होती रही है। ये प्रोग्राम की जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग इस्लाम, आप देख सकेंगे हर पीर और जुमेरात को ठीक 6:40 पर इफ्तार के बाद। सवालात भेज सकते हैं और जिन लोगों के सवालात के जवाब नहीं दे सके, चाहे वो ईमेल के जरिए थे, मैसेजेस या फ़ोन कॉल्स के जरिए, इंशाल्लाह आइंदा आपके सवालात को शामिल किया जाएगा। और आपको ईमेल एड्रेस बता देते हैं, aaj.understandingislam@yahoo.com पर आप हमें ईमेल कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर हमारा 09002225 पे हमें फ़ोन कर सकते हैं। फिर आपसे मुलाकात होगी और खूबसूरत सी बातें होंगी, आपके सवालात होंगे, मोईज़ अमजद साहब के जवाब बात होंगे और हम आपके साथ रहेंगे इसी प्रोग्राम में कि जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग इस्लाम। अपना, अपने घर वालों का, सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।